लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण विषय हैं सामायिक लोकोपकारी चर्चा, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, हम एक वैश्विक महामारी कोविड-19 का सामना कर रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ के मजबूत स्तंभ यूएन चार्टर की 75वीं वर्षगांठ 26 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने यूएन चार्टर को दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में पारित किया था। इस चार्टर पर हस्ताक्षर 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को शहर में किए गए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले 50 देशों में एक भारत भी था। तब से लेकर आज तक संयुक्त राष्ट्र और भारत दोनों ही बहुपक्षवाद में भागीदारी रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र में भारत अहम योगदान देता रहा है। इस चार्टर का भावी लक्ष्य पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना था। चार्टर में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम रखने, सामाजिक प्रगति और बेहतर जीवन के मानकों को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय कानून को मजबूत बनाने और मानव अधिकारों को बढ़ावा देने की पुकार लगाई गई है। 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा कि मौजूदा समय में वैश्विक महामारी, विषमता और हिंसा की चुनौतियों के बीच चार्टर के मूल्यों और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अवधारणा की प्रासंगिकता बनी हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
यूएन महासचिव अंतोनियो गुटेरेश ने कोरोना वायरस संकट पर यूएन द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई पर गुरुवार को रिपोर्ट जारी करते हुए ये जानकारी दी है। ये रिपोर्ट 26 जून को यूएन चार्टर दिवस की पूर्व संध्या पर डिजिटल माध्यमों पर जारी की गई। महासचिव गुटेरेश ने कहा कि यूएन चार्टर के 75 वर्ष ऐसे लम्हे में पूरे हो रहे हैं जब दुनिया एक जोखिम और उठा पटक भरे दौर से गुजर रही है। महासचिव ने यूएन चार्टर के वजूद में आने के समय को याद करते हुए कहा,
The Charter was adopted as the Second World War was in its final months and winding down. We mark the anniversary of that milestone as global pressures are spiraling up.
महासचिव कह रहे थे कि चार्टर पर ऐसे समय में दस्तखत किए गए थे जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के कगार पर था। हम चार्टर की 75वीं वर्षगांठ ऐसे समय में मना रहे हैं जब दुनिया अनेक तरह के दबावों का सामना कर रही है। चार्टर ने तबाही के ढेर पर बैठी दुनिया में नियम और उम्मीदें बहाल किए थे। चार्टर आज भी हमारी दुनिया के लिए मापदंडों की बुनियाद बना हुआ है। एक ऐसी दुनिया जो महामारी से जूझ रही है, व्यापक भेदभाव का दंश झेल रही है और जलवायु परिवर्तन के खतरे में घिरी है। गरीबी, असमानता और युद्ध व संघर्षों के भी डर के साय में जी रही है। महासचिव अंतोनियो गुटेरेश के शब्द। इस रिपोर्ट में कोविड-19 को विश्वव्यापी महामारी के रूप में परिभाषित किए जाने के बाद से अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। साथ ही ये रिपोर्ट वैश्विक एकजुटता और एकता के जरिए बेहतर ढंग से पुनर्बहाली का एक रोड मैप भी पेश करती है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस ने 26 जून शुक्रवार को जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 संक्रमण का खतरा सभी को है, इसलिए उसकी रोकथाम व इलाज के लिए औजारों की उपलब्धता की सभी के लिए सुनिश्चित करनी होगी। कोविड-19 के मामले अभी भी तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमित लोगों की संख्या 1 करोड़ को पार कर चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बृहस्पतिवार 2 जुलाई तक संक्रमितों की संख्या 1,05,33,779 थी और इससे मरने वालों की संख्या 5,12,842 है। कोविड-19 पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम गेब्रेयेसिस।
इट्स क्लियर दैट टू ब्रिंग कोविड-19 अंडर कंट्रोल एंड टू सेव लाइव्स वी नीड
यह स्पष्ट है कि कोविड 19 पर काबू पाने के लिए असरदार निदान, वैक्सीन और उपचार की जरूरत है और ऐसा अभूतपूर्व स्तर पर अभूतपूर्व गति से किया जाना होगा। और ये भी स्पष्ट है कि सभी लोगों पर कोविड 19 से संक्रमित होने का जोखिम है, इसलिए सभी के पास इन औजारों तक पहुंच होनी चाहिए ताकि इसकी रोकथाम, परीक्षण और उपचार किया जा सके, न सिर्फ उनके लिए जो इसका खर्चा उठा सकते हैं। इसी उद्देश्य से यूएन स्वास्थ्य एजेंसी ने हाल ही में एक्सेस टू कोविड 19 टूल्स एक्सेलरेटर पहल को शुरू किया था, जिसका लक्ष्य इस महामारी पर काबू पाने के प्रयासों में तेजी लाना है। कोविड 19 के खिलाफ जैसे ही असरदार और जीवन रक्षक वैक्सीन और इलाज विकसित होंगे, उन्हें इस पहल के माध्यम से तेजी से मुहैया कराया जा सकेगा।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से उन सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा करने की अपील की है जिन्हें नागरिकता कानून में हुए संशोधन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया है। विदित हो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में भारतीय संसद द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कानून बना नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA में भारत के पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए नागरिकता दिए जाने की प्रक्रिया तेज कराने का प्रावधान है। इनमें केवल ऐसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को ही ये नागरिकता देने की बात कही गई है जो भारत में साल 2014 से पहले आकर रह रहे हों, लेकिन इसी तरह की सुरक्षा मुसलमानों को नहीं दी गई है जो उन देशों में अल्पसंख्यक गुट हैं। दिसंबर 2019 के अधिनियम के पारित होने के बाद भारत में हिंदुओं सहित विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे, जिनका मानना था कि इस अधिनियम से भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष नींव का हनन होता है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने भारत के नए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पर चिंता जताते हुए कहा कि ये बुनियादी तौर पर भेदभावपूर्ण है। मार्च में कोविड 19 महामारी के कारण प्रदर्शन रुक गए थे और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी महामारी से संबंधित स्वास्थ्य चिंताओं के कारण जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से उन सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को तत्काल रिहा करने की अपील की है जिन्हें नागरिकता कानून में हुए संशोधन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। दिसंबर 2019 में अधिनियम के पारित होने के बाद भारत में विभिन्न धर्मों व आस्थाओं के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए थे, जिनका मानना था कि इस अधिनियम से भारतीय संविधान की धर्मनिरपेक्ष नींव का हनन होता है। इनमें सबसे चिंताजनक मामला दिल्ली में एक गर्भवती महिला छात्र सफूरा जरगर का है, जिन्हें 2 महीने से ज्यादा समय तक कथित रूप से जिन हालात में रखा गया उनकी तुलना एकांत कारावास से की जा सकती है। मानवाधिकार विशेषज्ञों के मुताबिक उन्हें अपने परिवार और वकील से नियमित रूप से संपर्क रखने की अनुमति नहीं दी गई और न ही पर्याप्त चिकित्सा देखभाल और आहार दिया गया। सफूरा जरगर को आखिरकार गर्भावस्था के 6वें महीने में मानवीय आधार पर 23 जून 2020 को जमानत मिली है। विशेष रिपोर्टर ने कहा कि इनमें से अनेक कार्यकर्ता छात्र हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें महज नागरिकता संशोधन अधिनियम की आलोचना करने और उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी स्पष्ट रूप से भारत के जीवंत नागरिक समाज को एक कपकपा देने वाला यह संदेश देने के लिए की गई है कि सरकारी नीतियों की आलोचना को सहन नहीं किया जाएगा। मानवाधिकार विशेषज्ञों ने भारत सरकार से आग्रह किया है कि तत्काल सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाए जिन्हें फिलहाल मुकदमे से पहले हिरासत में बिना पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में रखा गया है। इनमें से अनेक मामले ऐसे हैं जिनका आधार महज CAA की भेदभावपूर्ण रूप की आलोचना करने वाले उनके भाषण हैं। यूएन विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को जमानत न मिलने देने के लिए सरकार आतंकवाद निरोधक या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कानूनों और प्रक्रियात्मक पुलिस शक्तियों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिनके तहत भारी सजा दिए जाने के प्रावधान हैं।
आज के सभी विषय यूएन रेडियो द्वारा तैयार किए गए थे और अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश प्रकाशित कर जुलाई माह के दौरान परिवारों के लिए विशेष प्रार्थना का आग्रह किया है। प्रभु ईश्वर से उन्होंने मंगल याचना की है कि परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिले। वीडियो संदेश इस प्रकार है, परिवार की रक्षा की जानी चाहिए। परिवार कई खतरों का सामना करता है, जीवन की तेज गति से उत्पन्न तनावों का सामना करता है। कभी कभी माता पिता अपने बच्चों के साथ खेलना भूल जाते हैं। यह आवश्यक है कि कलीसिया परिवारों को प्रोत्साहित करे तथा उनके पक्ष में रहे, जिससे उन्हें इन तरीकों की खोज करने में मदद मिले जो उन्हें इन सभी कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्रदान करते हैं। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि आज के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिले और विशेष रूप से राज्य द्वारा उन्हें संरक्षण और सुरक्षा मिले। मानव जाति के समक्ष प्रस्तुत गंभीर चुनौतियों का सामना करने में विश्व के लोगों को समर्थन मिले, इस आशा से प्रति माह संत पापा फ्रांसिस अपनी प्रार्थना मनोरथ को एक वीडियो संदेश के माध्यम से संपूर्ण विश्व तक प्रसारित करते हैं। वैटिकन के वरिष्ठ धर्माधिकारी तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में परम धर्मपीठ के स्थायी पर्यवेक्षक महाधर्माध्यक्ष इवान यूरकोविट्स ने चेतावनी दी है कि कोविड 19 महामारी विकासशील देशों में लोगों की आजीविका को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार और विकास बोर्ड के 67वें सत्र में गुरुवार को विश्व के प्रतिनिधियों को संबोधित कर महाधर्माध्यक्ष यूरकोविट्स ने कहा कि द्रुत गति से बढ़ती कोविड महामारी ने निवेश योजनाओं में गिरावट, बेरोजगारी और साथ ही वित्तीय बाजारों में गहरी अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि इस महामारी से हालांकि संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, तथापि सर्वाधिक गंभीर दुष्प्रभाव विकासशील देशों के लोगों पर पड़े हैं। विकासशील देशों को तत्काल सहायता प्रदान करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा, इस समय यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि संकटग्रस्त विकासशील देशों को तेजी से और पर्याप्त ऋण राहत पहुंचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समन्वित कार्रवाई की जाए, इसलिए कि वे पहले से ही असुरक्षित ऋण बोझ के तले संघर्षरत हैं तथा कोविड संकट ने उनकी स्थिति को बद से बदतर बना दिया है। महाधर्माध्यक्ष यूरकोविट्स ने कहा, वर्तमान संकटकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर परम धर्मपीठ का आग्रह है कि सभी राष्ट्रों को ऐसी स्थिति में रखा जाए कि वे इस संकट से उत्पन्न अवस्था का सामना करने में सक्षम बने। इसके लिए निर्धन देशों के कर्जों में कटौती करना अथवा उन्हें पूरी तरह माफ कर देना शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा, अधिक समावेशी और धारणीय विश्व की ओर बढ़ना महज बाजारों को बेहतर बनाना नहीं है, अपितु इसका अर्थ है मानव संसाधनों में निवेश करना, चतुर पहलों को प्रोत्साहन देना, निर्धनों को कर्ज की सुविधा प्रदान करना तथा उपभोक्ताओं को मजबूत सुरक्षा प्रदान करना। उन्होंने कहा, अर्थव्यवस्था की जटिलता को देखते हुए नैतिक और सांस्कृतिक कारकों को अनदेखा या कम नहीं किया जा सकता। इस संकट की जड़ें न केवल आर्थिक और वित्तीय हैं, बल्कि नैतिक भी हैं। अर्थव्यवस्था में नैतिकता के अस्तित्व की प्रधानता को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि विश्व के लोगों को अपने कार्यों को बढ़ावा देने के लिए एकजुटता की नीति अपनानी चाहिए। तमिलनाडु के टूटीकोरिन धर्म प्रांत में 36 वर्षीय कैथोलिक पुरोहित फादर जेवियर एल्विन ने अपने कमरे में पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली। भारत में 10 दिनों के अंतर्गत पुरोहितों की आत्महत्या का यह तीसरा मामला है। समाचारों के अनुसार 36 वर्षीय फादर जेवियर एल्विन का मृत शरीर टूटीकोरिन धर्म प्रांत द्वारा संचालित स्कूल के परिसर में पाया गया। वे स्कूल में टीचर थे। टूटीकोरिन के धर्माध्यक्ष अंतोनी पिल्लई ने बताया कि पुलिस ने फादर के कमरे से एक आत्महत्या लेख प्राप्त किया है, जिसमें फादर ने लिखा है कि वे निराश और कुंठाग्रस्त थे। धर्माध्यक्ष पिल्लई ने कहा, वे फादर की हताशा के कारण से अनभिज्ञ थे तथा उन्हें यह नहीं मालूम कि उन्होंने यह चरम कदम किस लिए उठाया था। ऊका समाचार से उन्होंने कहा, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है तथा इसके बाद ही मामला साफ हो पाएगा। 2 जुलाई को धर्माध्यक्ष ने बताया कि जब बुधवार को फादर जेवियर नाश्ते के लिए उपस्थित नहीं हुए, तब किसी को चिंता नहीं हुई किंतु जब वे सुबह 11 बजे तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकले तब पुरोहितों ने उनका दरवाजा खटखटाया। जवाब न मिलने पर उन्होंने दरवाजा खोला और फादर के मृत शरीर को पंखे से लटका देखा। धर्माध्यक्ष ने कहा यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि फादर जेवियर बहुत ही सक्रिय, दयालु और मिलनसार अध्यापक और पुरोहित थे। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। यह अविश्वसनीय है कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया। जो लोग उन्हें पहचानते हैं वे आश्चर्यचकित हैं कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने इतना गंभीर कदम उठाया। गौरतलब है कि 20 जून को आंध्र प्रदेश के गुंतूर धर्म प्रांत में 50 वर्षीय फादर येरुवा बाला रेड्डी ने आत्महत्या कर ली थी। बताया जाता है कि वे मानसिक अवसाद के शिकार थे। इसी प्रकार केरल के पुन्नाथुरा गांव की एक पल्ली के कुएं से 22 जून को 51 वर्षीय फादर जॉर्ज एटुपारा का मृत शव बरामद किया गया था। आशंका है कि मानसिक अवसाद का शिकार होने के कारण उन्होंने भी आत्महत्या कर ली थी। म्यांमार के कैथोलिक धर्माधिपति कार्डिनल चार्ल्स बो ने संपूर्ण विश्व के ख्रिस्तानुयायियों से हांगकांग के लिए प्रार्थना की अपील की है। चीन की सरकार ने आम जनता के साथ परामर्श के बिना हांगकांग पर एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया है जो हांगकांग की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता तथा शहर की उच्च स्तरीय स्वायत्तता का वादा करने वाली एक देश दो प्रणाली सिद्धांत का उल्लंघन करता है। कार्डिनल बो ने एक पत्र प्रकाशित कर लिखा, एशियाई धर्माधीक्षीय सम्मेलनों के संघ की ओर से मैं संपूर्ण एशिया और विश्व के समस्त ख्रिस्तानुयायियों तथा अन्य सभी धर्मों के लोगों को हांगकांग के लिए प्रार्थना हेतु और वस्तुतः चीन और उसके सभी लोगों के लिए सतत प्रार्थना हेतु आमंत्रित करता हूं। उन्होंने लिखा, हांगकांग एशिया का एक अनमोल रत्न है। वह पूर्व का मोती है, पूर्व और पश्चिम के बीच एक चौराहा, चीन के लिए एक प्रवेश द्वार, मुक्त व्यापार के लिए एक क्षेत्रीय केंद्र और अब तक स्वतंत्रता और रचनात्मकता का एक स्वस्थ मिश्रण रहा है। कार्डिनल बो ने लिखा, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अपने आप में गलत नहीं है। प्रत्येक देश को राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु कानून बनाने का अधिकार है। हालांकि इस तरह के कानून को मानवाधिकारों, मानवीय गरिमा और बुनियादी स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ संतुलित किया जाना चाहिए। कार्डिनल बो के इन्हीं शब्दों के साथ आज का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।